शांति। प्रश्न उत्तर की सीरीज में 111वां प्रश्न है। प्रश्न है, सेवा केंद्र पर अगर प्रविष्टता वाली आत्माएं ज्ञान सुनने के लिए आती है तो क्या करना चाहिए। अभी बाबा का उत्तर सुनिए, फिर हमारा विचार सागर मंथन। उत्तर है, अगर ज्ञान सुनने में उसमें थोड़ा सा भी अंतर आता है या सेकंड के लिए भी अनुभव करती है तो उसको उल्लास में लाना चाहिए। दूसरी बात है, कई बार आत्माएं थोड़ा सा ठिकाना न मिलने के कारण भी आपके पास आती है, तब परखना चाहिए कि बदलने के लिए आए हैं वह वैसे ही पागलपन में जहां रास्ता मिला आ गया, ये परखना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसे पागल होते हैं जो जहां देखेंगे कि दरवाजा खुला है वहां जाएंगे, क्योंकि होश में नहीं होते हैं। तो ऐसे भी कई आएंगे, लेकिन उसको पहले परखना है, नहीं तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। बाकी और अच्छे लक्ष्य से आया है, परवश है, तो उसको शक्ति देना अपना काम है। लेकिन सावधानी बरतनी चाहिए, ऐसी आत्माओं को कभी भी अकेले में अटेंड नहीं करना। दूसरा, कि कुमारी कोई ऐसी आत्मा को अकेले में अटेंड न करे, क्योंकि कुमारी को अकेला देख करके पागल का पागलपन और निकलता है। इसलिए ऐसी आत्माएं अगर समझती हो योग्य है तो उन्हें ऐसा टाइम दो जिस टाइम दो तीन और हो या कोई जिम्मेवार, कोई बुजुर्ग हो तो उस समय उसको बुलाकर बिठाना चाहिए। क्योंकि जमाना बहुत गंदा है और बहुत बुरे संकल्प वाले लोग हैं, इसलिए थोड़ा अटेंशन रखना भी जरूरी है। इसमें बहुत क्लियर बुद्धि चाहिए, क्लियर बुद्धि होंगी तो हर एक के वाइब्रेशन से कैच कर सकेंगे कि ये किस एम से आया है। तो सेवा केंद्र पर प्रविष्टता वाली आत्मा ज्ञान सुनने आए तो क्या करना चाहिए। बाबा साकार और अव्यक्त मुरली में कई बार बता चुके हैं कि ऐसी ऐसी आत्माएं आएगी, और जब आत्माएं आएगी तो उनका क्या हाव भाव होगा, क्या नहीं होगा, वो तो देख के ही मालूम पड़ता है। उसके लिए सबसे पहले चाहिए आत्मिक स्थिति। बाबा ने हमको पहला पाठ पढ़ाया है कि आत्मा का लेसन पक्का हो जाए, क्योंकि आत्मिक स्थिति से बाबा ने हमको कई युक्तियां बताई कि आत्मिक स्थिति में रहना है, आत्मा को देखना है। आजकल देखो कोरोना चल रहा है, उसमें मुख ही बंद कर दिया है, तो अभी आत्मा ही दिखाई देती है, क्योंकि ये तो बंद है, मालूम नहीं पड़ता है सामने वाला कौन है। कई बार खोलना पड़ता है, कोई पूछते हैं कि भाई आप कौन हो, तो हमको मुख दिखाना पड़ता है। लेकिन बाबा ने देखो ये युक्ति है एक प्रकार की कि हम जैसे जैसे आगे चले जाएंगे, चलते जाएंगे, बाबा की युक्तियां और ही आएगी, क्योंकि हमको मुख देखने का अभ्यास हो गया है। क्योंकि हम किसी को देखते हैं तो आत्मा के ऊपर इतना ध्यान नहीं जाता है, इसलिए बाबा ने एक युक्ति ये भी युक्ति है कि जब ये मुख पर तो कहने का मतलब कि आत्मिक स्थिति का बहुत बहुत अभ्यास चाहिए। और शुरुआत में भी मालूम है कि जो भट्टी चली थी उसमें 14 साल तक एक ही पाठ पढ़ाया उनको, और वो पाठ इतना पक्का हो गया जो हमको इतने साल होने के बाद इतना पक्का नहीं हुआ है। तो ये बहुत आत्मिक स्थिति का अभ्यास कि जिसको भी देखो आत्मा देखो। और उस देखने से क्या होगा कि हम सामने वाले व्यक्ति को जल्दी से पहचान जाएंगे कि कौन है, क्या है, इसका वाइब्रेशन क्या है। और उससे क्या होगा कि बाबा कहते हैं ना, उसका मनोभाव भी हमको मालूम पड़ जाएगा कि ये व्यक्ति कौन सी है, कैसी। आपको मालूम होगा कि बाजार में जब जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो लोगों का चेहरा और यहाँ का चेहरा में बहुत अंतर है। हमें यहाँ रहते तो हमें मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो बाहर का चेहरा भी ऐसा होता है, और हमें वो लोग बहुत जल्दी से अगर सफेद ड्रेस ना हो तभी भी पहचान जाते हैं कि ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। कहने का मतलब कि जितना आत्मिक स्टेज हमारी पावरफुल होंगी उतना सामने वाली आत्मा का हाव भाव क्या है, उसका व्यवहार क्या है, उसका वाइब्रेशन क्या है, हम परख सकते हैं। तो इस आत्मा को चाहिए क्या, क्योंकि कई आत्मा को चाहिए शांति और हम उसको सुख की बातें करेंगे, किसको प्यास है और प्यास है और हम उसको और भोजन देंगे। तो बाबा के पानी चाहिए तो पानी ही उसको शांति देगा, लेकिन पानी के बदले में भोजन दे नहीं, फिर भी प्यास लगी है, प्यास लगी है, आप कितना भी है उसको बोलोगे एक चम्मच घी डाल दो मुख में, वो मना करेगा। तो जितना जितना अव्यक्त स्टेज हमारी स्ट्रांग होती जाएगी और जितना जितना हम योग का अभ्यास करते जाएंगे उतना उतना सामने वाले के जो भी हमारे सामने आएंगे उसको हम परख सकते हैं, उसका विचारों को पढ़ सकते हैं। कई बार क्या होता है कि डिप्रेशन वाले जो हमारे सामने आते हैं ना, तो हमें भी उनका हाव भाव ही ऐसा ही होता है, जैसे लगता है कि उसको कुछ हो गया है, बहुत डिप्रेशन में होते हैं, तो उसमें फिर इतना अंतर नहीं कर सकते हैं कभी कभी। तो डिप्रेशन वाली आत्माएं आती है, वो भी जैसे एक बार एक बहन आई थी, उसको डिप्रेशन था, वो कहती मेरे को बहुत डिप्रेशन आता है, लेकिन एक्चुअली उसको डिप्रेशन नहीं था, उसको एक आत्मा उसमें घुसी हुई थी, इविल सोल। तो क्या होता है कि इसका हाव भाव, पहले तो बोला कि मेरे को तो डॉक्टर गिरीश भाई के पास जाना है, क्योंकि वो मुझे है ना तो ठीक कर देंगे। आपको गिरीश भाई किसे किसके से ठीक करेंगे, तो बोला फिर हमको सूरज भाई के पास ले चलो। तो दो दो बातें करते थे, तो कहने का मतलब कि बहुत समय इसके साथ बात करते हैं तो मालूम पड़ता है कि इस व्यक्ति किस प्रकार की है। तो इसके लिए चाहिए कि जब जितनी जितनी आत्मिक स्थिति हमारी पावरफुल होंगी और आत्मा देखने का अभ्यास हमारा होगा, उतना उतना हमारे में परखने की शक्ति आएगी कि व्यक्ति सामने वाला कौन है। और उससे क्या होगा, आत्मिक शक्ति हमारे में आएंगी तो हमारे में कंट्रोलिंग पावर भी आएगा, और जितना किसके पर कंट्रोल करना है, व्यर्थ पर, क्योंकि जितना जितना हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प होगा हम लोगों को परख नहीं सकेंगे। तो व्यर्थ संकल्प पर कंट्रोल, जितना जितना हम व्यर्थ से दूर रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प कैसे आता है कि चलते चलते किसी को देख लिया, कोई झगड़ा कर रहा है, हमने देख लिया, हमारा संकल्प चलेगा। तो ये हम एक बार है ना, तो यहाँ रक्षाबंधन के टाइम पर एक साधु के पास गए थे और वो है ना देखता ही नहीं था, बिल्कुल आंखें बंद रखता था और देख कहता मैं देखता नहीं ज्यादा। तो हमने बोला आप तो हमको देख रहे हो, तो बोला आज मैंने आंखें ऐसे खोल करके आपको देख रहा हूँ क्योंकि आप ब्रह्माकुमारी आश्रम से आए हो। तो फिर हमने पूछा कि आप क्यों नहीं देखते, बोला देखने से बहुत ही विचार चलते हैं और जितना नहीं देखो ना उतना अच्छा है, और अभ्यास भी करके देखना, क्योंकि हम जाते हैं ना, अब एक छोटी छोटी सी बात है, भोजन करने जाते हैं तो हम पहले क्या क्या है वो देखते हैं, किसकी थाली में क्या क्या है, भले कितने भी बाबा के बच्चे बन गए राजयोगी बन गए लेकिन ये थोड़ा सा होता है, तो जब देखने का भी होता है इसलिए वो भाई कहता कि हम देखते ही नहीं। तो परखने की शक्ति के लिए व्यर्थ पर हमारा कंट्रोल होगा, और व्यर्थ पर कंट्रोल तब होगा जब हमारा देखना और सुनना, देखने से भी ज्यादा सुनना होता है, क्योंकि सुनना तो हम बाजू में बैठे हैं, कान ऐसे बंद तो नहीं कर सकते, आंखें तो बंद ही कर सकते हैं, तो कान से जो भी जाता है उससे भी हमारा ज्यादा संकल्प चलता है, तो व्यर्थ में हम चले जाते हैं। तो जब व्यर्थ पर हमारा संकल्प पर कंट्रोल होगा तो हम ये काम कर सकते हैं। कई आत्माएं केवल आती है तो शांति के लिए आती है और हम उसको शांति से बैठ जाती है। एक आत्मा यहाँ आती थी, वो बाबा के कमरे में बैठती थी, बाबा के कमरे में घंटे तक बैठती थी, 10:30 बज जाता तो उठती नहीं थी। तो एक बार हमने पूछा कि आप यहाँ आते हो तो आपको कितनी तो शांति बहुत मिलती है, मेरे को आप बाबा को जानते हो, बोला मैं ओशो है ना उसको ओ मैं तो याद करके बैठती हूँ। अब बाबा के कमरे में इतने घंटे तक बैठते हो, सुबह में भी आ जाएगी 2 घंटा बैठ जाएगी, रात को भी आ जाएगी, हमारे ओम शांति भवन में भी कभी कभी वो आ जाती थी। तो कहने का मतलब कि शांति के लिए शांति चाहिए, लेकिन बाबा के कमरे में बैठ करके लेकिन शांति तो मिलती है, लेकिन वो अपना योग करती थी। तो कई बार है ना, तो आत्माएं जो आती है हमारे पास तो हम उसको परखना चाहिए। दूसरा है कि कई आत्मा आती है तो कैसे आती है, तो हम है ना, तो जब ये अहमदाबाद में थे ना तो एक बहन आई थी, तो राजयोग भवन में थी उस समय, तो रास्ता था ना वहाँ ही सेंटर था, तो दरवाजा वो खुला ही रहता था। तो दोपहर का 1 बजे का टाइम था और एक माता आई तो कहती है कि मुझे मिलना है। किसको मिलना है, बोला अंदर जाना है मुझे। अंदर कहाँ जाना है, बोला इतना बड़ा हॉल है ना, इतना बड़ा मंदिर है, हमको अंदर जाना है। तो मैं तो खड़ी रही, दीदी को पूछ के आई, मैंने बोला एक माता ही, बोले कौन है वो, मैंने बोला अनजान लगती है। तो दीदी ने बोला मेरे पास लाओ, तो दीदी ने बोला माता से बात किया, चुप हो गई, दीदी की पर्सनालिटी बहुत थी तो चुप हो गई एकदम। तो मेरे को कहता है कि इसको है ना भोजन दे दो क्योंकि भूखी लगती है। मैं तो भोजन तो मांग नहीं रही है, वो बोला नहीं नहीं उसको भोजन दे दो। तो फिर हम है ना तो बाजू में ले जाके उसको थाली में भोजन दिया, तो भोजन खाया उसने, और भोजन खाने के बाद वहां ही बैठी रही, बोला मेरे को जाना नहीं है। तो भाइयों ने बहुत उसको बोला कि आप माता जी अभी आप जाइए, बोला नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। लेकिन फिर है ना, तो दीदी ने बोला रिक्शा में उसको प्यार से गिफ्ट दिया, अच्छी गिफ्ट दिया, छोटी सी शॉल दिया और एक और भी एक अच्छा बर्तन दिया छोटा सा। तो उसको बोला लो ये, फिर वो है ना खुश हो गई, फिर रिक्शा में बिठा दिया उसको, और वो भाई को बोला कि इसको है ना, तो ये जो आपको कहाँ जाना है, बोला रेलवे स्टेशन पर। अच्छा रेलवे स्टेशन पर इसको छोड़ देना। दीदी ने उसको पैसा भी, रिक्शा वाले को पैसा भी दे दिया, तो रकचक ना करे कुछ भी। तो अभी इसका क्या हुआ है तो नहीं पता है। तो ऐसी आत्माएं आती है, और दूसरी नहीं मालूम नहीं पड़ा। और फिर हम जब सुख शांति भवन में आए ना, तो एक काला काला कपड़ा पहन के एक माता आई, उसने बोला कि मुझे बहनों को स्नान कराना है। बहनों को स्नान कराना है, कैसे स्नान कराना है? बोला नहीं, मैं तो सबसे सबको स्नान कराते कराते आई हूँ, तो यहाँ बहुत बहने हैं स्नान कराने। तो हमको तो हंसी आती है ना ऐसे सुन करके, क्योंकि अकेले नहीं होते हैं ना, तो 5-7 लोग होते हैं तो थोड़ी। तो फिर उनको बिठाया, तो दीदी तो थी नहीं उस समय, कोई नहीं था, तो भाई लोग है ना उसको पूछते, बहन जी कहाँ से आई, कहाँ से आई? तो वो है ना, तो पहले तो जवाब देने लगी, लेकिन उसके बाद वो चिढ़ गई एकदम। बोला मैंने बोला ना मैं यहाँ स्नान कराना है, भाई यहाँ तो स्नान करने किसको कराना? बोला बड़ी बहन को। तो एक भाई था ना, उसने क्या बोला उस समय, किरीट भाई करके एक भाई था, उसने बोला सुनो आपको बड़ी बहन को कराना है स्नान, बड़ी बहन है ना वो यहाँ से गई है, 2 दिन के बाद आएगी, इसलिए आप किसको स्नान कराओगे? तो अच्छा बड़ी बहन बाहर गई है, ठीक है मैं चली जाती हूँ। तो ऐसे शांति से बात करने से भी काम चल जाता है, लेकिन अगर हम उसको बहुत ही उसमें है ना, एक तो ताकत बहुत होती है, इविल सोल होती है ना, उसमें ताकत बहुत होती है, और ऐसी ताकत होती है ना कि हम इसका सामना नहीं कर सकते, और बहने तो कर ही नहीं सकती है, और थोड़ा डर भी लगता है। एक बार क्या हुआ था कि जो एक बहन को, हम विजिटिंग रूम में बैठे थे, तो दीदी ने कहा, एक बहन बापू नगर से आई थी, बोला हमारे पास एक नई आत्मा आई है और ट्रांस में जाती है। ट्रांस में जाती है? तो बोला हाँ ट्रांस में जाती है। तो विजिटिंग रूम में हमारा एक योग रूम जैसा ही था, मतलब कि जब भी देखो इसमें योग चलता ही रहता था, भोग भी उसमें ही लगता था, योग सुबह का योग भी लगता था, वो सब विजिटिंग रूम में लगता था। तो ये बहन बाहर बैठी थी, तो दीदी ने बोला कि इसको अंदर लाओ विजिटिंग रूम में। वो आवे नहीं, वो बाहर ही थल्ले पर ही बैठी रही। वो बहन जो लाई थी ना, ओके ये चल अंदर चल, तुम दीदी को बताओ कि कैसे तू बाबा के पास जाती है सब। ये बाबा के पास जाती है लेकिन वो संदेश नहीं लाती है। तो फिर उसको अंदर बिल्कुल ही नहीं आ रही थी, तो फिर उसको अंदर बहुत ये करके उसको लाया, प्रेम से समझाया, और दीदी ने उसको देखा। और फिर है ना, तो उस समय कैलाश दीदी हमारे पास थी, तो बोला कि तुम ऐसा करो कि ये बहन बैठी है ना, तुम भी 12 बजे का टाइम था ना, तो योग तुम भी बैठो, पूछ के आओ बाबा को। उस समय तो ऐसा था ना, तो पूछ के आई, तो बाबा ने ऐसा कहा कि ये आत्मा है ना वो भटक गई है, मतलब कि वो जो ऊपर नहीं जाती है, मेरे पास तो आती नहीं है लेकिन भटक गई है वो, एक्चुअली वो ऐसे ही आंखें बंद कर देती है और कुछ और देखती है और भटक गई है, इसलिए वो संदेशी तो नहीं है, क्योंकि वो। फिर उसको बोला कि आप इसको ले जाओ, और उसको ज्ञान में इंटरेस्ट नहीं, योग में इंटरेस्ट, बस योग में बैठी रहेगी। बाबा के कमरे में नहीं बैठती थी, वहां भी बाहर ही बैठती थी और आंखें बंद कर देती थी और झटका लगाती थी, तो फिर ऐसे वेरीफाई भी होता था। तो कहने का मतलब कि ऐसे ऐसे प्रकार के लोग सुख शांति भवन में, क्या था कि वो झोन था ना, तो बहुत सारी ऐसी बहनें जो होती थी ना उसको लाया जाता था वहां। तो फिर दीदी, हमारी दीदी है ना बहुत स्ट्रांग थी, इनके जैसे स्ट्रांग मैंने कोई देखा नहीं है। स्ट्रांग मीन्स कि इतना स्ट्रांग कि किसी से डरती नहीं थी, कोई भी हो कैसी भी आत्मा आई डरती नहीं थी, इतनी स्ट्रांग थी। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते थे। एक बार क्या हुआ कि बॉम्बे से एक भाई आया था, भाई का नाम नहीं बताऊंगी, बहन का नाम भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो भाई आया था और साथ में बड़ी बहन थी, वो आए थे। तो उन्होंने बोला कि मधुन जा रहे हैं, हमारे साथ एक बहन थी, तो हम रात को है ना, वो बड़ी बहन है उसका गला दबा रही थी, गला दबा रही थी, तो बोला गला दबा रही थी तो इसलिए हमको लगा कि ये बहुत, तो इसलिए हम इसको यहाँ छोड़ देते हैं, क्योंकि हम उसको नहीं ले जाएंगे अभी, तो दीदी के पहले उसको यहाँ छोड़ो। तो वहां एक कैबिन है हमारी सुख शांति भवन में, एक कैबिन थी, तो उसको है ना कांच भी लगाया था, तो उसको वहां बोला कि कमरे में नहीं आऊंगी, सारी रात खड़ी रही वो। और हमको दीदी दो तीन बहनों को बोलती थी, क्योंकि हमारी कैबिन अलग थी कांच वाली, देख के वो क्या करती है, सारी रात खड़ी रही, बिल्कुल नहीं। उसको खाना दे तो खाना ना खाए, उसको सोने का बोले तो सोने का, उसको नहीं, बस खड़ी रही खड़ी रही। दूसरे दिन है ना, तो दीदी ने उसको बोला कि यहाँ आओ बहन जी, आपको क्या चाहिए। बोला वो दोनों चले गए ना, मुझे वहां भेजो। दोनों दोनों चले गए ना, उसके साथ साथ मुझे जाना था, वहां मुझे भेजो। तो दीदी ने फिर फोन किया कि ऐसा है तो क्या करे। तो फिर दादी जी थी, उसने जवाब दिया कि दो एक एक दिन और रखो उसको, वो लोग यहाँ से आएंगे तो उसको साथ ले जाएंगे, लेकिन उसको यहाँ नहीं भेजो अभी, क्योंकि बहुत भीड़ थी, सब कुछ था, और ये तूफान भी मतलब कि करती थी, पागल जैसा करता था वो, करती थी। तो फिर बोला कि दीदी ने सब समाचार दिया कि ऐसे सारी रात खड़ी रही, ऐसा किया ऐसा किया। तो ठीक है, तो फिर जब आए तभी उसको लेके नहीं गए, वो बोला हम लेके नहीं जाएंगे क्योंकि ये तो हमको बहुत परेशान करेंगे। फिर उसकी विधि होती है तो फिर ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि बाबा ने कई बार बोला है कि इसका भी विशेषज्ञ होते हैं, उनके पास ले जाइए, ऐसा कहते हैं। तो हर चीज ज्ञान से भी नहीं होती है, और हर चीज मतलब कि और विधियां करनी पड़ती होती है। तो ये मतलब कि ऐसा होता है। फिर बाबा ने कहा कि अकेले में अटेंड ना कर। एक बार क्या हुआ था कि मैं नीचे सोती थी तो दीदी ने एक फॉरेनर्स आई नहीं, उसके पहले है ना 83 में कॉन्फ्रेंस थी, तो एक मॉरिशस की बहुत बड़ी वीआईपी बहन आई थी। तो उसमें अज्ञानी थी, लेकिन लेके तो आए उसको, लेकिन मैं टेलीप्रिंटर में बैठती थी ना, तो ये मेरे हाथ पे हाथ रखती थी। पहले तो मुझे डरने लगा, पहले तो मैं उसको देखा लेकिन डर नहीं लगा, लेकिन उसने हाथ पे हाथ रखा, मेरे सामने देखने लगी घड़ी घड़ी ऐसे झुक करके, तो मुझे अंदर से थोड़ा डर लग गया। और फिर मैं वहां से उठ गई, मैंने बोला मैंने उसको बोला बिठा दिया वहां, और दीदी के पास गई। मेरी दीदी मैं टेलीप्रिंटर रूम में नहीं जाऊंगी, वो बहन आई है ना तो मेरे हाथ पे हाथ रखती है, मेरे सामने देखती है। बोला कुछ नहीं, मेरे को नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी। फिर उस समय दूसरी बहन बड़ी बहन थी, एलिस ब्रिज से आई थी ना, तो उनको मैंने बताया, मैंने बोला कि ये ऐसा ऐसा करते हैं आप देखो। तो घड़ी घड़ी वो ही रूम में आ जाती थी। तो फिर मैं वहां से उठ गई, मैं जाती नहीं थी। फिर वो उसको है ना, तो दो लोग लेकर के गए थे, बाजार में गए थे, तो वहां ऐसी ऐसी हरकतें करने लगे ना, तो इन दोनों को मालूम पड़ गया, दीदी को भी पता पड़ा कि इसमें तो इविल सोल है। अभी ऐसे व्यक्ति को यहाँ कॉन्फ्रेंस में कैसे लाए, बहुत बहुत एक करके लाए थे। तो भी दादी जी ने उसके लिए बोला था कि इसको लेके आओ, क्यों कोई बात नहीं है, उसको अलग रूम देंगे, उसको फैसिलिटीज देंगे, लेकिन ला क्योंकि यहाँ तक आई है। और उसका जब पति को मालूम पड़ेगा कि वो इस माउंट आबू नहीं गई है, तो बहुत ही डिससर्विस हो जाएगी। तो फिर यहाँ लाए, यहाँ उसकी कितनी परवरिश की, उसके बाद वो अहमदाबाद में नहीं आई, सीधा एयरपोर्ट पर भेजा। उसका पति को बुलाया था, पति को बुलाया और पति को बोला, तो उसमें तीन तीन सोल थी। हाँ, तो ऐसा ऐसा होता है। तो सेंटर पर और एक बहन आई थी, तो रात को आई तो मेरे को कहती है कि मेरे को दीदी ने बोला तुम उसके साथ सो जाओ, ठीक है। मेरे को पता नहीं था, और वो आई थी तो ठीक है, मेरे को बोला ये गेस्ट है, तो मैंने बोला उसको गेस्ट रूम में भेजो। ने बोला नहीं नहीं ये बहन है ना, तो तुम रहो। तो मैं है ना तो सोई, पहले तो मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन रात को जागी, मेरे सामने बैटरी फेंक रही थी, तो मेरा बहुत डर लग गया। ऐसे ऐसे करती थी। और फिर मैंने देखा अभी मतलब कैसे डर लगता था उड़ने में। फिर ऐसे करके सोई, तो फिर वो उस तरफ से वो अपने कपड़े सारे निकाल दिया उसने, तो मैं वो डर गई। और फिर मैं बाथरूम में चली गई, बाथरूम में से निकली नहीं। और हम बाथरूम का दूसरा दरवाजा था, दूसरा दरवाजा बाहर जाने का होता ना, उसमें निकल गई बाहर। और फिर दीदी के पास में गई, मेरे को दीदी तो क्या है, मैंने बोला ये तो कपड़े निकाल दिया उसने। तो बोला ऐसा क्या है, मैं को हाँ अभी मैं नहीं जाऊंगी, आप मुझे हर बार भेजते हो ना, मुझे डर लगता है। तो दीदी ने फिर है ना, तो दो बहनें थी, नेहा बहन थी और दूसरी एक बहन थी, उसको बोला कि, तो मेरे को बोला एक कोड़े निकाल दिया, कैसे जाए हम, मैंने बोला मैं नहीं जानती अभी। तो गए तो सारे कपड़े बाहर रख करके वो बाथरूम में, बाथरूम खोल के मैं तो निकल गई, तो वो बाथरूम में चली गई, निकली नहीं, दो तीन घंटे तक निकली नहीं वो। तो फिर क्या करें, 9 बजा तो उसको बोला कि नाश्ता करना है, तो वो बहन, फिर हमने दरवाजा बंद कर दिया बाहर से, दीदी ने बोला बंद कर दो क्योंकि बाहर ऐसी ऐसी घूमेगी अच्छा नहीं है। फिर उसको एक दूसरी बहन थी ना, बड़ी बहन थी, वो वहां गई, उसको कपड़े पहनाए, उसको क्या पहनाए, साड़ी पहनाए, सब कुछ अच्छे कपड़े लेके आई, और उसको है ना, तो ये कपड़े थे ना, उसको ये निकाल के निकल दिया था ना, तो उसको सब पहनाया कपड़ा साड़ी, फिर उसको दिखाया मिरर में कि तो कैसी लगती है, वो खुश हो गई, सब जैसे कपड़े हो गए तो खुश हो गई। और फिर उसके कपड़े थे ना वो धुलाई में डलवा के धुलाई करा दिया। फिर उसको पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो कहती है कि मेरे पास कपड़े ही नहीं थे, कपड़े दूसरे थे ही नहीं। तो अभी देखो ऐसा ऐसी हरकतें, हमको तो ऐसा लगता था कि कुछ इविल, लेकिन इविल नहीं थी, लेकिन ऐसा तो परखने में ये, क्योंकि डर गए ना हम, तो परख नहीं सके, व्यर्थ चलने लगा बहुत संकल्प कि अभी दीदी को कैसे कहूं, तो ऐसा होता है। तो फिर इसलिए शांति, जिसको भी ऐसी सूल आती है ना, उसको वो प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। हमारे पास एक बहन भी थी, संदेशी थी, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जब भी भोग लगाने गई थी तो उसमें एक सूल आ गई। तो जब भी आई ना, तो पहले क्या था कि हम रेंट पर रहते थे ना, तो एक रूम ऐसा था जिसमें हम सभी बहनें रहती थी, और एक रूम था उसमें दीदी और वो ही रहते थे, क्योंकि दीदी के साथ कोई रहते नहीं थे, हम सभी एक ही जगह पे रहते थे, 12-13 बहनें एक ही रूम में, और वहां दीदी और ये। तो क्या होता था कि एक बार ये जो ऐसे आई तो सीधी सो गई हमारे रूम में आकर के, तो सभी बहनें, तो छोटी छोटी बहनें कैसी होती है ना, उसकी आंखें सब देख करके उसको पूछने लगी, हंसने लगी ऐसा, क्योंकि उसका बोलना चलना हिंदी बिल्कुल उसको है ना, तो हिंदी इतना आता ही नहीं था, लेकिन इतना अच्छा हिंदी बोलती थी वो। तो सब पूछने लगे, तुम कौन हो ना, क्या हो ना, कहाँ से आई हो ना, तो बोलती थी वो साबरमती जो नदी है ना, वहां से ये बहन मुझे, मतलब मैं वहां से आई हूँ ना, नाम भी बता रही थी, सब बता रही थी। तो हमको तो मजा आती थी पूछ कर रही कि बहुत सारी बहनें थी ना, तो फिर बहुत हाहा ही होने लगा ना, तो दीदी को आवाज आया, उन्होंने बोला ये सामने घर में क्या हो रहा है, क्यों इतना कर रहे। तो दीदी ने पूछा कि क्या हुआ, तो एक घंटी, ये समझ ना, सबकी एक एक घंटी थी, मेरी एक नंबर, दो नंबर नेहा बहन क्या ऐसा था, तो एक नंबर की घंटी लगाई, तो मैं गई, तो मुझे है ना, तो कहती वहां क्या है, मेरे को दीदी बहन में पूछा भूत आया है। तो मैंने बोला कि भूत आया, मैं को तो हाँ भूत आया है, और सब पूछ करते हैं, और वो जवाब देती है और मजा आती है देखो ऐसी मजा नहीं करने की होती है, पता है तुम्हारे घुस जाएगी वो आत्मा, ऐसा होगा तो ऐसे नहीं करने का, ऐसा मुझे पता है। तो फिर उसको बिल्कुल सामने नहीं आती थी, दो भाइयों को भेज करके उसको नीचे बुलाया, दीदी ने अपने रूम में, बिल्कुल नहीं आती थी। उसके बाद फिर उसकी भी तो विधि हुई थी, क्योंकि वो तो वो स्ट्रांग थी, तो ऐसे। लेकिन हमने ये देखा है कि मधुवन में जब ही वो सोल आती है ना, तो वो प्रत्यक्ष हो जाती है, सेंटर में इतनी प्रत्यक्ष नहीं होती है। यहाँ है ना, एक बार क्या हुआ था कि सब लाइन में बैठे थे, दादी सभी बैठे थे लाइन में, और एक बहन बाहर से आई थी, वो ज्ञानी थी नहीं ज्ञानी थी मालूम नहीं, लेकिन सुंदरी दादी है ना, उसकी सेवा करने आई थी, तो छोटी सी थी, 15-16 साल की थी। और एक बार क्या हुआ कि वो कमरे में बैठी है बाबा के, और मैं उसके पीछे बैठी थी, वो एकदम सामने, मेरे सामने बैठकर मेरे को दृष्टि देने लगी। तो मैं तो है ना जैसे बहुत बहादुर हूं, ऐसे ऐसे ड्रामा किया, लेकिन अंदर से बहुत डर था। मैंने बोले कब उठे, मैं उठूं, हाँ बाहर से तो ऐसा करना पड़ता है ना, अंदर से तो डर डर मेरे को कब उठे। और ये उठी ना तो मैं भी फिर दो पांच मिनट में उठी तो निर्भय भाई सब बैठे थे, उसको क्या बोलती मेरे को है ना देखो मैं शिव बाबा हूँ और मेरे में मेरी दृष्टि लो, तो ऐसे सब बात करती तो निर्भय भाई हंसी में कहता था हाँ तुम्हारी दृष्टि लेंगे क्यों नहीं लेंगे। तो फिर दृष्टि दो चार और भी बैठे थे तभी दादी नहीं आई थी, 10 बजे दादी तो आती थी जल्दी नहीं आती थी, तो सारे लोग बैठे थे भाई लोग बैठे तो ये निर्भय भाई, तो निर्भय भाई को खास कहते थे आप मेरी दृष्टि लो मैं शिव बाबा हूँ मैं, तो ये कहते अच्छा तुम शिव बाबा है, हाँ मैं शिव बाबा मेरी दृष्टि लो। तो फिर मैंने है ना जल्दी जल्दी शशि बहन को बुलाया, मैंने बोला बहन जी ऐसा ऐसा है आप देखो, तो आई और फटाफट उसको एक दो घंटे में तो उसको रवाना कर दिया गाड़ी में बिठा के शिव बाबा को। तो और सेवा इतनी अच्छी करती थी मैं बताऊं कि बहुत खुश थी, इतनी सेवा करे इतनी सेवा करे। लेकिन उनके जब ये सेंटर पे बोला ना कि ये कहाँ से आई, तो बहन बोला इसमें थोड़ा सा ऐसा तो था लेकिन इतना था हमको मालूम नहीं था अब तक, तो यहाँ है ना तो कोई भी आत्मा थे बहुत प्रत्यक्ष हो जाती है तुरंत ही मालूम पड़ जाता है, फिर उसको रवाना करना पड़ता है ऐसे। वो कहती मैं ज्ञान में इतने ज्ञान में वो है नहीं, लेकिन वो इसकी माता जी आती थी उसके साथ साथ आती थी सेवा कर लेती थी, तो उनको लगा कि अच्छी है चलो मधुवन भेज दो तो अच्छी सेवा करेगी है, ऐसा करके उसको लेके आए थे। हाय ऐसा ऐसे आत्मा को डर भी लगता था। तो फिर क्योंकि अब जब ये ऐसी आत्माएं आती है उसको है ना तो हमें पहले जोर जुलम नहीं करना चाहिए, उससे है ना उसका पागलपना बहुत निकलता है, उससे ताकत बहुत बढ़ जाती है। इसलिए आपको पता है कि बाबा का जब बाबा का पधरावनी का समय होता है ना तभी पीछे से बहुत चिल्लाते हैं लोग, जैसे जोर जोर से चिल्लाते हैं, और कोई कोई तो है ना स्टेज पर आ जाते हैं। एक भाई है ना मैं बताऊं, पता नहीं उसमें इविल था कि नहीं था, फॉरेनर्स भाई था, जैसे पहले इतना स्ट्रांग नहीं था सिक्योरिटी, जब बाबा की वाणी चलती थी सब बैठ जाते थे। तो ये है ना तो एक यहाँ बाबा की बाबा बैठा था और ये संधि एक दूसरी होती है, एकदम है ना जैसे मूली शुरू हुई दौड़ के आके बैठ गया और ऐसे बाबा के सामने ही बैठ गया ऐसे, कोई की हिम्मत नहीं थी कि मुरली में से इसको उठाए। जैसे मुरली पूरी होने आई तो फिर चार पांच भाई आया उसको पकड़ के ले जाने लगे, बाबा बाबा देखो देखो बाबा देखो बाबा, बाबा ने ऐसे देखा नहीं क्योंकि बाबा को तो अपना मतलब की पार्टियों से मिला, तो उसको है ले गए पकड़ करके और फिर डिस्पेंसरी में जाके इंजेक्शन दिलवा दिया। नहीं वो उसका जोश था उस पर विल नहीं था, लेकिन बाबा के प्रति इतनी ये थी कि व्यक्ति ऐसा लगता था तो दौड़ के बैठ गया और उतरे ही नहीं जरा भी, उसको कितना उतारे उतरे ही नहीं, क्योंकि उसको मैंने बोला कितनी भाग्यशाली आत्मा पूरी मुरली सुनी इसने संदली पर। तो कहने का मतलब कि कोई भी ऐसी आत्मा आती है तो उसको थोड़ा थोड़ा प्यार से अगर बात करते हैं समझाते हैं तो ठीक हो जाता है, लेकिन उसके साथ जैसे जो जुलम हम करते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। और वो कैसी भी दुर्बल आपको लगेगा, इतनी दुर्बल है कुछ भी उसमें नहीं है दम, लेकिन दम बराबर दिखाएगी, वो चार पांच भी होंगे ना फेंक देंगी, ऐसी आत्माएं होती है। तो दूसरा है कि सेंटर का वातावरण स्ट्रांग हो, सेंटर का वातावरण स्ट्रांग हो, क्योंकि यहाँ जब भी हम सेंटर पर कोई भी सेंटर खुलता था ना उसको 15 दिन तक उसमें निरंतर योग रखते थे कि भाई चलो ये भी कहीं भी कुछ भी हो। और पहले थे ना लोग जमीन देते नहीं है, कोई जगह नहीं देते थे, ऐसी ऐसी जगह देते थे जैसी मतलब कोई आने वाला ना हो, बहुत पड़ी रही होती हो ऐसी ऐसी जगह देते थे, क्योंकि वो लोग पहले ऐसी नहीं देते तो इसमें जाना पड़ता था। तो रोज ही वहां योग चलता था, तो 15 दिन 30 दिन तक योग का वातावरण रहता था, तो क्या है वाइब्रेशन थोड़ा ठीक अच्छा हो जाता था। तो सेंटर का वातावरण अगर स्ट्रांग होता है तो आत्मा हिम्मत नहीं करती है, बिल्कुल ही हिम्मत नहीं करती, अगर आएगी तो वो चली जाएगी, लेकिन स्ट्रांग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो आत्मा जो आती है तो कई बार ऐसी होती है ना कि उसको कोई ज्ञान बन का कुछ होता नहीं है, लेकिन चलो यहाँ दरवाजा खुला है या तो कोई जगह है तो घुस जाएंगी, निकलेगी नहीं उसके बाद। तो वातावरण इतना स्ट्रांग होता है तो वो व्यक्ति जो अगर परवस वाली आत्मा है वो उसमें प्रवेश नहीं करती है। फिर उसमें अकेले में अटेंड नहीं करने की बात आती है, तो इसमें क्या होता है कि अकेले में तो जब ये थोड़ी थोड़ी भी ऐसी हरकत करती है तो सामने वाला डरता भी है, डर जाते हैं। तो इसलिए जब ऐसी आत्मा आती है तो बहनों के बजाय भाइयों को साथ में रहना चाहिए, क्योंकि बाबा कहता है ना कोई कुमारी होंगी तो इसमें पागलपन होगा नहीं होगा तो भी आ जाएगा, और वो ऐसी हरकतें हाथ पकड़ने की हरकत करेगी, कोई हरकत करेगी। लेकिन अगर कोई भाई होगा, बुजुर्ग होंगे, माताएं होंगी, तो क्या है कि वो परिस्थिति को संभाल लेते हैं। इसलिए ऐसे ऐसे जब आता है तभी कोई कुमारी को तो कभी भी अटेंड करने के लिए नहीं भेजना चाहिए। दूसरा है कि उसके लिए निडरता चाहिए अभी, और निडर भी हो। लेकिन हमारे वहाँ एक क्या होता था, एक बार है ना माताएं बहुत स्ट्रांग होती है, दो तीन माताएं बहुत स्ट्रांग होती थी, जब भी ऐसा काम होता था तो दीदी उसको बुला लेती थी, इधर आओ, तो वो बहुत स्ट्रांग होती थी। और दो तीन भाई था ना, वो भी बहुत स्ट्रांग था कि भाई कुछ जहां भी उसको भेजना होगा भेजते ना, तो भी वो वहां उसके साथ जाते थे। तो निडर बना, क्योंकि ये ऐसा है ना कि हम छोटे छोटे थे ना, तो तभी लाइट नहीं थी, लाइट नहीं होती थी, तो क्या होता था कि अंदर घर में जाना है ना, दो तीन कमरे होते हैं ना, तो अंदर कोई भी परछाई पड़ती थी तो नहीं जाते थे, डर लगता था। तो हमारा भाई जो था ना छोटा था, लेकिन क्या कहता है, एक घड़ी घड़ी डरती रहती है, डरती रहती है, क्या है घर में हम रह रहे हैं क्या, मेरे को नहीं नहीं वहां डर लगता है। तो कहने का मतलब कि तो निडर बनना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि अगर, क्योंकि वो स्ट्रांग होता है ना, उसके पास नहीं आता है, स्ट्रांग होता है ना तो उनको मालूम पड़ जाता है कि ये स्ट्रांग है। जैसे बंदर होते हैं ना, इसको आपने देखा होगा, बहने होती है ना तो घुर घुर करेगा, भाई होंगे ना बिल्कुल ही चला जाएगा। तो अभी तो कहने का मतलब कि वो जितना स्ट्रांग व्यक्ति होगा ना, तो जितना स्ट्रांग होगा ना तो उसके अंदर से वो बिल्कुल डर जाएंगे वो भी, क्योंकि एक्चुअली उसमें कहते हैं कि ताकत बहुत बताते हैं लेकिन ऐसी ताकत नहीं होती है। अगर जिसका प्योरिटी है तो प्योरिटी है उसमें, उनके सामने वो व्यक्ति, वो परवस आत्मा होती ना, हार जाती है। प्योरिटी बहुत चाहिए, अब आत्मा में जितनी जितनी प्योरिटी होंगी, जितना जितना अच्छा वाइब्रेशन होगा और व्यर्थ संकल्प पर कंट्रोल होगा, तो व्यक्ति बहुत अच्छी रीति से ऐसी आत्माओं के साथ ये कर सकते। यहाँ एक आत्मा थी जो है ना अपने कोई थप्पड़ मारती रहती थी, तो हमारे थल्ले पर बैठ जाती थी और कहती थी कि देखो इसको मैं कितना कहती हूँ बैंगन नहीं खाना, तो भी बैंगन ही मांगेंगे, बैंगन ही मांगती है ऐसा। तो बहुत ऐसा होता था ना, तो फिर इसको कहीं भेजा तो उनको बोला कि उसको है ना बाबा के कमरे में ही बैठती थी, बाबा के कमरे में से मैं बैठूंगी। वो वहां उसको ले गए ना, तो उन लोगों ने बोला कि ये आत्मा इतनी प्योर है, उसमें है नहीं कुछ, सिर्फ उसके ऊपर परछाई पड़ी है, बाकी कुछ है नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, तो ऐसा। तो और फिर आई ना, तो उसको बोला कि हनुमान का जाप करना, तो मुझे बोलती मैं हनुमान को क्यों जाप करूं, हनुमान का मैं नहीं जाप करूंगी, मैं कोई भक्ति मार्ग वाली नहीं हूं। उसको बोला मैं करूंगी नहीं, उसको माला दी ना फेंक दिया, मैं शिव बाबा के सिवाय किसी की बनने वाली नहीं, शिव बाबा की हूँ, शिव बाबा की रहूंगी। लेकिन वो एक और एक आत्मा हमारे ऑफिस में भी आई थी, तो उस सेंटर में मालूम ही नहीं था, वो आती थी मुली सुन करके चली जाती थी, लेकिन उसको पता नहीं था, लेकिन वो पैसा बहुत, मतलब भोग माँ पैसा बहुत देती थी, तो बहन को इसमें संपर्क नहीं हुआ था। जब यहाँ आई ना, तो मेरे को कहती, मेरे ऑफिस में बैठती थी और सेवा में आती थी ना, तो मैं भोग लगाने जाती थी, तो सेवा में देखती थी रोटी में, तो इसको है ना ताली लगे बाबा 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 ऐसा करती थी। सभी है ना जो बेवती थी वो कमरे में भी ऐसे बोलती थी, बोलती रहती थी। मैंने बोला आप ऐसे क्यों बोलते हैं, मन में बोला, बोला देखो ऐसा बोलती ना भाग जाता है वो, नहीं तो है ना मेरे पास पास खड़ा रहता है। तो ऐसी आत्माएं भी होती है जिसमें मतलब कि ऐसा व्यवहार होता है। अंत समय में जब नजदीक आता जाएगा, बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि ऐसा समय आएगा कि ये लोग जो है ना अचानक मृत्यु होगा सब, क्योंकि पांच तत्वों का वार होगा है ना। तो लोगों जो पांच विकार वाली आत्माएं जो है उसका भी संस्कार जो है ना जब भी सेंटर में आते हैं, जब भी नई जगह पे जाते हैं ना तो क्या होता है अपने ओरिजिनल संस्कार को दबा के, ओरिजिनल माना वो नहीं प्रेम सुख शांति आनंद नहीं, वो है ना दबा के रखते हैं। तो ऐसे यहाँ भी हम योग करते हैं सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे पुराने संस्कार होते हैं वो दबे हुए रहते हैं। समय पर आप देखो कैसा उसका रिस्पॉन्स आता है। तो जब भी ऐसा समय आएगा पांच प्रकृति का वार होगा, फिर हमारे में जो विकारों का अंश रहा होगा उसका कितना बड़ा रूप हो जाएगा। तो तमोगुणी आत्माएं, दुनिया में तमोगुणी आत्माएं हैं, उसका विवार होगा, काम क्रोध लोभ अहंकार बढ़ जाएगा। तो और फिर जो भक्ति में भक्त लोग होते हैं उसको भी तो भक्ति करते करते इतनी प्राप्ति नहीं होती है तो दुखी हो जाते हैं, भगवान को पुकारते रहते हैं। और पुराने संस्कार ऐसे कई बार बाबा कहते हैं ना ये जो रहा हुआ संस्कार है ना वो आपको धोखा देगा कहते हैं ना, तो वो संस्कार भी निकल आएगा। कई बार देखो 25-30 साल से चलते हैं तो भी पुराने संस्कार ऐसे आते हैं जैसे अज्ञानी ऐसा लगता है। तो और किसी को कर्म भोगोंगा, ऐसी ऐसी परिस्थिति आएगी ना तो व्यक्ति को नॉर्मली रहता है लेकिन परिस्थितियों के कारण वे ऐसे इविल जैसा व्यवहार करेगी, लड़ेगी झगड़ेगी किसी का बाल खींचेगी। अब ये प्रसंग नहीं सुनाऊंगी ये बाल खींचने वाला। तो ऐसा व्यवहार हो जाता है। तो कर्म भोग जो आता है ना तो व्यक्ति अपने शरीर से हार जाती है, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो फिर रोते हैं चिल्लाते हैं गुस्सा करते हैं किसको मारते हैं सब होता है। तो ये भी ये जो व्यवहार होता है ना इविल नहीं, लेकिन इविल जो कम नहीं होता है वो तो ज्यादा ही खतरनाक होता है। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, सब कुछ तो हमारे सामने आएगा। बाबा ने बोला ना कि प्रकृति का ये होगा खुने ना है खेल जो होगा, उसमें हमें मालूम नहीं है कि किसका बेचारे का दोष नहीं उसका खत्म हो जाएगा। फिर लोगों को मतलब कि कर्म भोग जो आएगा सब कुछ बहुत तकलीफ हो जाएगी और अकाल मृत्यु हो जाएगी। अभी ये जो कोरोना अभी लास्ट चल रहा है ना उसमें हमने सुना कि एक घर में 3-3 लोग मर गए, तो अकाल मृत्यु हो जाएगी। अब आने वाले समय में इतना ये हो जाएगा, फिर दुखों से तड़पेंगे लोग और एक साथ समूह सामूहिक मृत्यु हो जाएगा। तो ये आत्माएं को सारी ढूंढेगी कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं, तो वो कहाँ जाएगी, तो जिसमें शांति होगी सुख होगा प्यार होगा उसमें जाएगी। तो कहाँ आएगी वो, जब बाबा ने बोला एक एक में 10-10 आत्मा घुसेगी, देख स्ट्रांग नहीं रहोगे तो। इसलिए हाँ इसलिए नहीं बाबा ने वाणी में बताया था अव्यक्त वाणी में। तो ऐसे समय बाबा कहते हैं कि ऐसा समय आएगा, इसलिए पहले से ही जो हमें अपना योग बल है उसको बढ़ाना पड़ेगा। बाबा कहते हैं बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि बुद्धि बल जो है, लेकिन अगर लाइन ही क्लियर नहीं होगी तो हमें मालूम नहीं पड़ेगा। तो लाइन क्लियर होनी चाहिए। अभी जितना समय गया उतना समय तो है नहीं, समय तो बहुत कम है, लेकिन अचानक इतना सारे लोगों का मृत्यु हो जाएगा, इतना सारे तूफान हो जाएंगे, चिल्लाने लगेंगे, तो ऐसे समय में हमारी स्थिति अडोल अचल रहे, इसलिए बाबा कहते हैं कि कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। बाबा ने तो बहुत सारी ड्रिल हमें सिखाई है ना, तो स्वयं की सेफ्टी के लिए एक बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर, एक बाबा के साथ हमारी लगन लगी रहे, जब भी समय मिले हम बाबा के साथ रहे, बाबा से हमारी बुद्धि योग लगा रहे, फिर अशरीर बनने का अभ्यास, बाबा ने बोला कि अशरीर बनने का अभ्यास बहुत काम में आएगा। और वो अंत में तो हम है ना, तो अहमदाबाद में थे तो एकदम कौमी उल्लड़ हो गया था, तो अंदर है ना बाहर से अग्नि का वो डालते थे, काकड़ा डालते थे अग्नि बना बना के, तो क्या होता था कि डर लगता था ना, तो उसी समय है ना तो बाहर से जो आते थे ना, तो दीदी ने बोले बाहर किसी को निकलना नहीं है, लेकिन हम वहां 20-25 लोग रहते थे, तो एक खोल रखा था उसमें से सब देखते थे योग। दीदी ने बोला यहाँ सबको योग करना है, लेकिन ये विजिटिंग रूम में बैठ करके हम योग नहीं करते थे, हम देखते थे। तो क्या है, उस समय बुद्धि का योग काम नहीं करता है, अगर हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी ना तो हम रुल जाएंगे ऐसी ऐसी परिस्थिति में। तो दीदी कहती थी कि तुम्हारी इतना छोटा सा हुआ है, तुम्हारी बुद्धि देखो, बैठो ना, बैठते ही नहीं थे। जैसे दीदी जाती थी ना, हम सब वन बाय घोल में देखते थे कहां से कौन आ रहा है कौन। तो अशरीरी बनने का अभ्यास और बहुत काल का निरंतर योगाभ्यास चाहिए, क्योंकि याद ही कवच है, याद के बिना कोई कवच है ही नहीं। और कवच पहन करके कोई जाता है तो युद्ध के मैदान में, तो उसको डर नहीं है कि बोला हमारा सेफ्टी कवच है, तो हमारा सेफ्टी कवच है, याद का कवच है। और ये कवच सदा हमारे साथ रहेगा तो हम हर जगह पे सेफ रहेंगे। और संगठित रूप में योग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, संगठन का योग बहुत काम करता है। संगठन जहां होगा, संगठित रूप में योग नहीं, कई बार नहीं चलो ये अकेले योग करते हैं, नहीं, संगठन में योग करना बहुत जरूरी है, अकेले भी करना है, संगठन में भी करना है। ओम शांति।